शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली है सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, आत्मानुभूति परमात्मा अनुभूति। कहा जाता है कि आत्मानुभूति के बिना परमात्मा अनुभूति नहीं होती है, इसलिए जब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है तब तक परमात्मा का भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन माना अनुभूति कहो या एहसास कहो या महसूसता कहो, वो उसका आभास कहो, ये रियलाइजेशन होता है। तो परमात्मा को भी तब महसूस कर सकेंगे जब पहले आत्मा को करेंगे। तो कैसे हम आत्मा को और परमात्मा को महसूस करते हैं वो तो बाबा हर मुरली में सुनाते ही हैं। पर लोग हमसे पूछते हैं, क्या आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो उनको क्या जवाब देना है, किया है या नहीं किया है? जो समझते हैं उनको कहना है कि हाँ किया है, वो हाथ उठाओ। सभी उठाएंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि हमने किया ही नहीं है। भले इन आंखों से नहीं दिखाई देती आत्मा, लेकिन महसूस तो होती है ना, ज्ञान तो है, समझ है, अनुभव है, अशरीरी स्थिति अपना अनुभव करते हैं। मैं आत्मा कैसे इस भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूँ, मेरा धाम परम धाम है। मन बुद्धि से सहज परम धाम पहुँच जाते हैं, शिव बाबा को सामने लाते हैं, उनकी सब गुणों की किरणें अनुभव करते हैं, अपने अंदर में भरपूर करते हैं। तो क्या क्यों नहीं कहेंगे कि हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है और परमात्मा का साक्षात्कार किया है। लेकिन मनुष्य ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि समझते कि इन आंखों से हम देखें, अभी इन आंखों से तो आत्मा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आत्मा कोई भौतिक चीज तो नहीं है। ये आंखें तो भौतिक है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक आंखें जो अप्राकृतिक है उसको कैसे देख सकती है? तो उसके लिए तो फिर अप्राकृतिक शक्ति चाहिए, साक्षात्कार हो या ज्ञान हो, समझ हो, वो महसूसता हो। तो वही है सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन। तो बाबा की आज की मुरली सारी इसी पर है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 9/5/2026 है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने, स्वयं को अनुभव करने, महसूस करने। तुम अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने, तुम अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। सारा सार आ गया। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? आप लोगों से भी तो पूछा होगा ना, और उत्तर भी दिया होगा। तो बाबा उत्तर बताते, क्या उनको बताओ? तो कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं, तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर दो, हाँ उत्तर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। फिर वो पूछेंगे क्या है आत्मा, तो बाबा कहते हैं उनको पहले बोलो हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है, आत्मा की पूरी पहचान दो, ये है आत्मा का साक्षात्कार करना। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है, आत्मा ही सारी नॉलेज, आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है तब तक क्या थे हम? आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक हम क्या थे? बाबा कहते तब तक देह अभिमानी थे, पता ही नहीं था मैं आत्मा हूँ, अपने को शरीर ही समझते थे, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, तो आत्मा की अनुभूति भी कौन करा सकता है? परमात्मा। बिना परमात्मा के कोई आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकता है, क्योंकि बाबा परमात्मा सदा आत्मा अभिमानी है, तो वो ही करा सकता है, मनुष्य तो सब देह अभिमानी है। तो बाबा कहते अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। जो बाबा से प्यार है वो कभी दिल से नहीं निकलेगा। हाँ, लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। वो फांस अंदर में हमने ये जो दृढ़ संकल्प किया है वो अनुभूति की है वो दिल से नहीं निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर, क्योंकि गीत में है ना, लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, ये बाबा के लिए कहते हैं। जो प्यार हमारा बाबा से है वो कभी दिल से नहीं निकलेगा। अब ऐसा कभी कोई नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, तो हम मर मिटेंगे तभी तो उनके साथ जाएंगे। हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है, इसीलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। होगा इस शब्द गीत में कुछ कि हम उनके साथ जाएंगे, तो ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं? शिव बाबा भी कहते मैं क्या करूं, बच्चे बुलाते हैं कि हम पतित हो गए हैं हमको आकर के पावन बनाओ, फिर क्या करूं? हाँ फिर क्या करूं, अच्छा पावन तो बनाने आऊंगा, मैं पावन बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा? मैं पावन बना के छोड़ दूंगा क्या? क्या करूंगा? साथ ले जाऊंगा। फिर क्या करूं पावन बना करके? यहाँ तो नहीं छोड़ जाऊंगा ना, ये सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए ही तो बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे, ये सारी दुनिया विशेष है, विकारी है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो वो बिगड़ पड़ेंगे। सीधा ऐसे किसी को नहीं कहो कि तुम पतित विकारी हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। तो मनुष्यों को समझाना है पर बड़ी युक्ति से। कैसे समझाएंगे? हाँ सब सारी दुनिया पतित है, तो भगवान आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो हम सब पतित है, ये नहीं कहो तुम पतित है और हम पावन है, नहीं, हम सब पतित, अपने को भी साथ में ले लो तो फिर बुरा नहीं लगेगा, कहेंगे तुम पतित हो, लड़ना चालू करेंगे, तुम पतित हो, मुझे पतित कहते हो। तो बाबा कहते हैं तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे, मनुष्यों को समझाना बड़ी युक्ति से है, महिमा करनी है एक बाप की, अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है, कहां देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना, डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो प्रश्न उत्तर करते हैं तो क्या बोलो उनको, प्रश्न उत्तर में मत जाओ क्योंकि वो तो शास्त्रों की बहुत बातें सुनाएंगे, तो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो, फिर क्या बोलो, अभी तो हम कच्चे हैं, है ना, कई नए नए भी तो थोड़ा ज्ञान सुनाते हैं, अब उनको पूरा समझ में आता नहीं है, हाँ कई फोन करते हैं हमको, बहन जी हमसे किसी ने ये पूछा, अब उसका हम क्या जवाब दें, हाँ बेचारों को नहीं मालूम होगा तो पूछते हैं, तो प्रश्न उत्तर करते तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर के रेस्पॉन्ड देगी, फिर उनको ये बताओ, आर्ग्यू नहीं करो, डिबेट करने की कोशिश नहीं करो, वो आपसे ज्यादा होशियार है, तो वो अपनी बात ऐसी रखेंगे और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते तो बोलो अभी हम कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर के रेस्पॉन्ड करेगी, वो जवाब देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, भगवानो वाच, अब भगवानो वाच कहकर फिर कह सकते हो, पहले कहो कि भगवान क्या कहते हैं, तो भगवान वाच है कि मनुष्य सब पतित है, भगवान खुद कह रहे हैं कि इस समय मनुष्य सब पतित है, पतित तो भगवान हो नहीं सकता, अब सब पतित है तो वो सब भगवान कैसे हो सकते हैं, पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं, देहधारियों को तो भगवान कह नहीं सकते, भगवान तो निराकार शिव को कहा जाता है, शिव के मंदिर भी बहुत हैं, तो पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे, नहीं तो डिबेट करेंगे और फिर चले जाएंगे क्योंकि उनको समझ में तो आएगा नहीं, अपनी बातें सुनाएंगे। तो बाबा कहते जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे, तो पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच, शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, उनको अपना शरीर तो है नहीं, जो कह रहा है परमात्मा कह रहे हैं माम एकम याद करो, उनको अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में नहीं आता, हाँ परमात्मा को अपना शरीर नहीं है तो देखने में नहीं आता, उनको कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा, तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है, हाँ अभी ये कभी नहीं के नाम ने तो किया ही नहीं, किया है सारा ज्ञान है समझ है तो क्यों नहीं किया, तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौधा भक्ति करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं साक्षात्कार हो जाए, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, वो क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं कि वो निराकार है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, सिर्फ कहते हैं वो निराकार है, आत्मा भी कहेंगे वही निराकार है, इन आंखों से तो देखने में नहीं आती है, अब बातचीत तो आत्मा ही करती है ना, जैसे देखो लगता है जैसे शरीर बोल रहा है लेकिन शरीर तो बोलता नहीं है, ये मुख तो केवल एक माइक की तरह है, तो बातचीत तो आत्मा करती है ना, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा और न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा निकल गई तो आत्मा भी बात कैसे करेगी? फिर न शरीर बात कर सकता, न आत्मा बात कर सकती। आत्मा निकल गई शरीर से, आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर न सके। आत्मा बिगड़, अब ये दोनों बातें आती है यहाँ, आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर न सके, आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचाना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। बाप द्वारा बाप को भी और खुद को भी पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जानते? परमात्मा का साक्षात्कार अगर हो भी जाए, एक ज्योति है, परंतु खुद को ही नहीं पहचाना, वो ज्योति भी क्या समझेंगे? तो आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जानते हैं? हाँ, अपने को ही नहीं देखा है। कई कहते हैं ना, आत्मा को, आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? तो हम कहते हैं आपका चेहरा आपको दिखाई देता है, तो आईना में देख सकते हैं ना चेहरा अपना भी, क्योंकि आंखें तो चेहरे में ही है, तो कैसे देखेंगे चेहरा आईना में? तो ज्ञान भी तो एक दर्पण है ना, जिसमें आत्मा को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जब अपने कोई नई जान देख सकती है। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसको भी पता नहीं है। चलो समझ भी लिया कि आत्मा एक सितारा है या चमकता है, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि आत्मा, क्या पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ये तो किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। मेरे द्वारा सुन रहे हो तो भी आत्मा समझ, मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली तो आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है ही नहीं। अथॉरिटी के बोल है कि किसी को भी आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। ये आत्मा का ज्ञान किसको भी है नहीं, इसीलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? कैसे करें? दिखाते ना, जब विवेकानंद, तो उस समय नरेंद्र नाम था, तो पहली बार जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गया तो दरवाजा खटखटाया, तो स्वामी जी ने अंदर से कहा कौन है? तो क्या कहा उन्होंने, मैं यही तो जानने आया हूँ। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ये मेरा सच्चा शिष्य बनेगा, ये जो जानने आया है कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है, बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब तो परमात्मा आत्मा को सुनाए, तो ये तब ये बातें हो। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण फिर मतभेद में आ जाते हैं। कई कितना शास्त्रार्थ करते रहते आपस में, वही सन्यासी भी आपस में शास्त्रार्थ करते, वो अपनी मत सुनाएगा, वो अपनी मत सुनाएगा। बहुत मते है ना दुनिया में, न जानने के कारण मत भेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर, कोई ना कोई उस शास्त्र को रिफर करेंगे, फिर दूसरा दूसरे शास्त्र को रिफर करेगा, और कई बार वो शास्त्र भी आपस में अलग अलग मत देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन सब का मदार है शास्त्रों पर। अब बाप कहते हैं उनसे न तो मुझे रियलाइज कर सकेंगे न अपने को ही रियलाइज कर सकेंगे। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, आत्मा सो परमात्मा ऐसे कहने से क्या होता है? चलो कह दिया आत्मा सो परमात्मा, ये कहने से क्या होता है? हमको पति से पावन फिर कौन बनाएगा? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हमको पति से पावन कौन बनाएगा? त्रिकालदर्शी कौन बनाएगा? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे ही नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो, क्या कहते हो, जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती है उनके लिए बाबा क्या टाइटल देते हैं? वो कौन है? नास्तिक। तो जो अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक है। और वो फिर क्या कहते हैं? वो फिर कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। वो हम लोगों को कहते हैं आप लोग भक्ति नहीं करते हो तो तुम लोग नास्तिक हो। हम कहते हैं तुम परमात्मा को जानते नहीं हो इसीलिए नास्तिक हो। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, ज्ञान समझाते हो ना, तो चित्र बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पास, चित्रों पर ही समझाया जाता है। अब कोई ने वर्ल्ड का नक्शा देखा ही नहीं होगा, दुनिया का नक्शा मैप देखा ही नहीं होगा, तो उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। हाँ, नक्शा देखा होगा तो फट बता देगा लंदन यहाँ है, अमेरिका यहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में तो कोई समझ नहीं सकते। जब तक कोई समझाए नहीं तब तक तो वो समझ नहीं सकेंगे। सूर्य वंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली? अब ये डिटेल है, चलो समझा भी दो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, पितृता में राम सीता का राज्य, लेकिन ये डिटेल है कि लक्ष्मी नारायण के राज्य से फिर ये चंद्रवंशी राम सीता का राज्य कैसे आया, कैसे आया? तो वो लिखत तो उस रूप से है नहीं ना, तो इसीलिए समझाना पड़ता है। तो बाबा वत कहते हैं सूर्य वंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली? पहले तो वो बात, कलयुग अंत में तो राजाई है ही नहीं भारत में, तो सूर्यवंशी कहाँ से आ गए, कहाँ से राजाई ली सतयुग में? फिर सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? इस कलयुग की दुनिया में तो ऐसे लड़ाई करते हैं तब लेते हैं राज्य। क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है, यानी कि लड़ाई करके चंद्रवंशी होने राज्य लिया, क्योंकि सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को ही जो बाबा कहते हैं हाँ वर्षा बाप से अभी मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है तो लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तो कैसे चंद्रवंशी बनते हैं, कई प्रश्न करते हैं ये, तो ये तो सहज है। बाबा कहते जैसे अभी आत्मा 16 कला संपूर्ण है, लेकिन धीरे 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 थोड़ी कला कम हुई और चंद्रवंशी बने तो ऑटोमेटिकली वो राजाई करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई की और चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों से लिया। तो बाबा कहते तो लड़ाई की तो बात ही नहीं है। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने युद्ध, चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं। अलग अलग घराना होता है, घराना बदल गया, वो सूर्यवंशी वो चंद्रवंशी, घराना बदल जाता है, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है ना। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, हाँ किताब में दिखाते हैं ना, वो अल्फाबेट्स का किताब होता है तो छोटे बच्चे को हाथी दिखाते हैं कि ये हाथी है, तो जब वो चिड़ियाघर में जाएगा तो बच्चे से पूछेंगे बेटा ये क्या है, हाथी है, क्योंकि चित्र में देखा है हाथी को, तो फट से बता देगा ये हाथी है। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ये हाथी है, ये फलाना है, हाँ तो वो समझ जाते हैं, फिर कहेंगे कि ये है जब देखेंगे प्रैक्टिकल में। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है, इसलिए बाबा कहते हैं चित्र भी जरूरी है तभी समझ सकेंगे। अब ये तुम पूरा इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है, ये है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, ऐसे भी नहीं समझो, ऐसे भी नहीं, सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, मुश्किल होता है ना, क्योंकि हर एक की समझ अपनी अपनी है, तो ऐसे तो नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं अलग अलग समझाना होता है। अभी तो बड़ा मुश्किल है अलग अलग समझाना, क्योंकि इतने हो जाते हैं तो अलग अलग टाइम का एक एक को बैठ के समझाएं, नहीं अलग अलग समझाना होता है, कायदे भी हैं, पहले बाप को आत्मा को समझे फिर क्लास में बैठे, ये कायदा है। हाँ, आत्मा परमात्मा का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक वो क्लास में बैठकर करेगा क्या, समझ ही नहीं आएगा उसको, तब फिर क्लास में बैठे तो समझेगा, नहीं तो समझ ही नहीं सकेगा, संशय उठाते ही रहेंगे फिर, क्योंकि पूरा पूरी समझ नहीं है तो संशय उठाते रहेंगे। तो तुमको समझाना है कि भगवान एक ही है, वो ऊंचे से ऊंचा है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। तो बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ, जन्म जन्मांतर तो भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, जो जिसके पुजारी होंगे वो उसको याद करेंगे, श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परम आत्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलता है। तुम्हारा परम पिता कौन है, परम आत्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा, जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए, हमारा पिता स्वर्ग का रचयिता है तो हम उनके बच्चे हैं तो स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो स्वर्ग में ही राजाई थी, अभी तो स्वर्ग है नहीं जो राजाई हो, नरक में तो किसकी राजाई है, बाबा कहते हैं नरक में रावण की राजाई है, रावण राज्य है ना, तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे कैसे उतरे, कुछ भी नहीं जानते, अभी तुम जानते हो, हाँ कैसे उतरे, अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है, ऐसे हो नहीं सकता कि पुनर्जन्म लेवे और नीचे न उतरे, नीचे उतरना ही है पुनर्जन्म लेते लेते। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। वर्षा तो मिलता है, लेकिन कब मिलेगा वर्षा? जब योग से पावन बने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। और जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, ये गारंटी है। भगवान गारंटी करते हैं, मुझे याद करने से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, नहीं याद करेंगे तो नहीं बनेंगे। समझानी देनी पड़ती है ना, कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है तो वो फिर लड़ना भी चालू कर देते हैं, बहुत दिमाग तेज है उनका। कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई न कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं, है ना, बहुत सेंटरों पर निकल पड़ते हैं विघ्न डालने वाले। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, अगर कोई ज्ञान कोर्स कर रहा है पर डिबेट करना चालू कर और हंगामा करना चालू कर रहा है तो बाबा कहते हैं उनको क्या कहो, क्या कहो? कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है सात रोज भट्ठी में रहकर समझना है। एक दिन में तो समझ नहीं सकेंगे, और ऐसे ही नया कोई आएगा तो समझ नहीं सकेगा, तो डिबेट करेगा, आर्ग्यू करेगा। सात रोज भट्ठी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है, नया सेंटर कोई भी खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए। जो भी वहां सेंटर खुलता है और रहते हैं तो वो पहले होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक बाप है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, पर परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर वो पावन है, वो कभी पतित होते नहीं। भगवान कभी भी पतित होते नहीं, तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन और कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं और पावन बहुत होते हैं क्या? पतित बहुत होते हैं और पावन थोड़े होते हैं। पतितों की भेंट में पावन थोड़े होते हैं। द्वापर कलयुग में कितने हो जाते हैं पतित, पावन तो थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, इसलिए पावन तो थोड़े होते हैं। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी तो सब निर्वाण धाम में चले जाएंगे। बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, अभी इतना लड़ाई झगड़ा चोर मारा मारी पता नहीं क्या क्या खून रेजी, ये सब जो ये सब करने वाले ना, उनको सबको सजा खिला के वापस भेज दूंगा और वहीं सुला दूंगा, दुनिया में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं तो लड़ाई झगड़ा करने वालों को नहीं भेजेंगे दुनिया में। केवल जो पावन बनते हैं, जो पवित्र बनते हैं, शुद्ध बनते हैं, वो ही फिर आएंगे सतयुग में। फिर लड़ने झगड़ने वाले कब आएंगे? फिर द्वापर के बाद आएंगे। तो देखो बाबा कहते हैं, तो उन सबको सुला देते हैं जो भी अभी लड़ने झगड़ने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, तो कलयुग में सब है पतित, पतित तो बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाते हैं, फिर वहां सो जाते हैं, उनको सुला देते हैं। है ना, आत्माएं सब जैसे सो जाती है परम धाम में, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे, ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, ये ज्ञान सारी दुनिया आकर नहीं लेगी, ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को ये मत दे सको, मुश्किल है। अभी सब की कयामत का समय है, विनाश सबका होना है, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति में बैठ सुने, डिस्टर्बेंस न करे, डिस्टर्बेंस नहीं करे, बीच में वाद विवाद नहीं करे, शांति से बैठ सुने। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वो ही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये गीता के अक्षर है, तो मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, ये भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता। तो पतित पावन बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, गीता से ही ये अक्षर तैलक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ, गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वो कहते हैं, गीता में भी बाबा कहते आटे में नमक तो है जो ट्रुथ जो भगवान ने दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ वो कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानो वाच, तुम कहते हो शिव भगवानो वाच, ये महावाक्य शिव भगवान के हैं न कि श्री कृष्ण के, तुम कहते हो शिव भगवानो वाच, भगवान तो निराकार है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, खुद ही समझते खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही तो ये बूढ़ा तन ब्रह्मा का तन उनको क्या नाम देंगे, जिसको ही भागीरथ कहते हैं, तो भागीरथ ने गंगा लाई भारत में, शिव की जटाओं से निकली, फिर भागीरथ ने गंगा को भारत में लाया, तो जिसको ही भागीरथ कहते हैं, जिस बूढ़े तन में मैं आता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है, भागीरथ भी मनुष्य ही दिखाते ना, ब्राह्मण दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं तो मनुष्य का ही नाम ब्रह्मा रखा जाता है, व्यक्त ब्रह्मा सो फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाता है, बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे, अंडरस्टूड है ना, पतित दुनिया है और पतित दुनिया में आते हैं पावन बनाने, तो यहाँ पावन मनुष्य कहाँ मिलेगा, तो पतित मनुष्य ही होगा, तो पतितों को पावन बनाने आते हैं तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे, ये है डिटेल की समझानी। तो पहले तो क्या समझाना चाहिए, बाकी डिटेल की समझानी है, पतित शरीर में आते हैं पतित दुनिया में, ये बात की बात है, पहले क्या समझाना चाहिए, भगवान कहते हैं कि कल्प पहले माफिक मुझे याद करो, कल्प पहले भी मैंने यही कहा था, गीता में है तो कल्प पहले भी यही कहा था, तो फिर कल्प के बाद यही आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पतित से पावन बनो, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, अब गंगा तो है ही, गंगा तो है ही है, गंगा से पतित से पावन बने तो फिर पतित पावन को बुलाने की क्या दरकार है, गंगा तो है ही है, हाँ सतयुग में भी गंगा तो होगी ना, तो गंगा तो है ही है, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे, हे पतित पावन आओ, परमात्मा को पुकारते तो वो फिर कहाँ से आएंगे, जरूर पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। तो बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर क्या हुआ, पावन थे, फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारे में खाद पड़ गई, त्रेता में आए चांदी की खाद पड़ गई, फिर द्वापुर में आए तांबे की खाद पड़ गई, तुम्हारे में खाद पड़ी है। अब वो कैसे निकलेगी, खाद जो पड़ी है कैसे निकलेगी, योग बल से ही निकलेगी, आग में तपाने से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे फिर पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है, बाबा कितना समझाते हैं तो अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, समझाओ ये, हम तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, बाप है, उसकी महिमा करते हैं। देहद का बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बन गए हो, बाबा रियलाइज करा रहे हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बन गए हो। पहले तो पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। हाँ, कैसे नीचे उतरते आए, बाबा कहते बिल्कुल सहज बात है, ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। तो कैसे बैठेगी बुद्धि में, उसके लिए क्या करो, बाबा क्या युक्ति बताते हैं, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है, मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, है ना, मनन करना माना वो मुख्य पॉइंट्स रिपीट करना, तो पहले मनन करना होता है, पॉइंट्स मालूम हो तभी तो रिपीट कर सकेंगे, फिर मनन के बाद चिंतन करना होता है, एक एक पॉइंट पर चिंतन करना होता है, फिर चिंतन के बाद फिर मंथन करना होता है, जैसे मंथन करेंगे तो मक्खन निकलता है, तो नई नई पॉइंट्स निकलेगी, मनन किया चिंतन किया तो नई पॉइंट्स निकलेगी, उसको मंथन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है, मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। मंथन करेंगे उसमें से नया नया, जैसे मक्खन निकलेगा, नई बातें समझ में आएगी, तो बाबा कहते हैं तो पक्का हो जाएगा। तो पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, भगवान के सिवाय तो और कोई कह ही नहीं सकता है मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब बाबा ने तो कह दिया, श्रीमत तो दे दी, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, है ना, पिता भी बेटे को कहेगा ना, बेटा करो न करो तुम्हारी मर्जी, मैं तो कहता हूँ ये करो। कल भी एक माता आई अपने बेटे को लेकर के आई, और क्या कहती है, वो बेटा अभी 10वीं ही मुश्किल से पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल जैसे किताब लेता पढ़ ही नहीं पाता, बस फोन ये मोबाइल चाहिए। तो हमने कहा उसको, तुम पढ़ेगा नहीं तो तुम कैसे तुम कमाई कैसे करोगे, कहता है नहीं मैं शेयर बाजार में काम करूंगा, शेयर्स लूंगा, ये करूंगा, पढ़ने की क्या जरूरत है। अरे शेयर्स तो ये तो सट्टा हो गया, ये तो आज शेयर ऊपर कल नीचे, तो आज ऊपर और कल नीचे जाएंगे, यही धंधा करोगे, दुनिया में जिन्होंने किया सब उसमें कैसे फेल हो गए, आखिर वो घाटा ही पड़ा है उनको, इसीलिए शेयर बाजार में कभी भी नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी माया है, तो आजकल दुनिया में इसका बहुत क्रेज है। तो बाबा कहते हैं, बाबा जो कहते हैं वो करो न करो तुम्हारी मर्जी, बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है, तो बाबा कितना समझाते हैं, फिर बाबा कहते हैं समझा समझा करके, फिर बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो। अब नहीं मानेंगे तुम्हारी मर्जी, हर एक को अपना अपना भाग्य तो खुद ही बनाना है। तो समझानी तो बहुत मिलती रहती है, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, फिर उसके बाद तो और भी कहते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है, सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है, पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान, नंबर वन बिजनेसमैन, अभी बाबा एक तरफ बाबा कहते सब कुछ भूलो, फिर बाबा कहते नंबर वन बिजनेसमैन बनो, तो नंबर वन बिजनेसमैन बन एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। बिजनेसमैन तो कदम कदम पर कितना कमा लेते हैं ना, तो नंबर वन बिजनेसमैन बन एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर वन बिजनेसमैन वो है, नंबर वन व्यापारी कौन है, जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। वो तो समझते धन की कमाई करनी है वो बिजनेसमैन, लेकिन हमारी बिजनेस कौन सी है, श्रेष्ठ संकल्पों की कमाई, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई, सबकी दुआओं की कमाई, ये कमाई है। तो बाबा कहते हैं बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो, जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, एक एक सेकंड एक एक कदम में कमाई, एक हर एक एक सेकंड में संकल्प व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदम पति बनेंगे, इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, जो मांगता है, मंगता माना मांगने वाला भिखारी, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। अब मंगता माना वो धन के भिखारी नहीं, कितनी चीजों के भिखारी बनते ना, मान के भिखारी, महिमा के भिखारी, पद के भिखारी, नाम के भिखारी, तो वो सब मंगते हैं, मंगता है, भिखारी है वो। तो जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है। खुशी के खजाने से संपन्न कौन हो सकेगा, जिसको कोई इच्छा नहीं है, नाम मान शान की भी इच्छा नहीं और तो कोई कुछ भी इच्छा नहीं, तो वही खुशी के खजाने से संपन्न होगा। तो जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति शरीर सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, उसके लिए क्या करो, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी न जाए। कल किसी ने मेरे से प्रश्न किया, अभी रोज सारा दिन लोग फोन करते, क्या प्रश्न किया, अचल और अडोल में क्या अंतर है, कौन बताएगा जवाब, अचल और अडोल में क्या अंतर है, एक ही चीज है या अलग अलग है, अचल और अडोल। अचल भी तो अडोल ही होगा ना, जो हिलता रहता है वो अचल थोड़ी है, तो अचल और अडोल में क्या अंतर है सतीश भाई, क्या अंतर है? अच्छा, अचल माना ऐसे हिलना नहीं, अडोल माना ऊपर नीचे नहीं होना ऐसे विचार सागर मंथन करना। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी न जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, पैसा चला गया कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हाथों की मैल है, पर खुशी न जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा भी चला जाए। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप रहते हैं। सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। सदा खुशी में रहो, ममता नहीं बनो, कदम कदम पर पद्मों की कमाई करो, सच्चा बिजनेसमैन बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज तो सब भट्टी वाले जाएंगे, जो आज जाएंगे भट्टी वाले सब हाथ उठाएं। देखो सब बच्चे भट्टी वालों ने बहुत अनुभव किया, अच्छा लगा सबको, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भाई। अभी जाकर के जो आपने सुना अनुभव किया वो औरों को भी अनुभव कराना, ठीक है? चलो बहुत अच्छा, अभी बाबा को याद करेंगे, कोई कल भी जाने